नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया और मिस्र के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में भारत को उसके G20 के एजेंडा के लिए समर्थन भी प्राप्त हुआ। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री J.E. Chalmers और सीतारमण की मुलाकात के दौरान भारत की G20 की आगामी अध्यक्षता को लेकर संभावित मुद्दों पर चर्चा हुई। सीतारमण की मिस्र की मंत्री रानिया अल मसहत के साथ मुलाकात में दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। सीतारमण ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक ए स्टीनर से भी सतत वित्तीय स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिकाऊ पारिस्थितिकी को लेकर विचारों को रेखांकित किया। मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के महासचिव माथियास कोरमान के साथ वित्त मंत्री की बैठक में भारत OECD द्विपक्षीय सरोकार और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान संगठन के सहयोग के बारे में बात हुई। भारत ने स्वदेशी स्तर पर विकसित 5G अवसंरचना शुरू कर दी है और अब इसे अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा। जॉन हॉपिंग्स स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इसकी भारत की 5G प्रौद्योगिकी की कहानी अभी लोगों तक पहुंची नहीं है। हमने देश में जो 5G सेवा शुरू की है वह पूरी तरह से अपने दम पर की है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है और जिसे चाहिए हम उस देश को 5G दे सकते हैं। सीतारमण ने कहा, 5G कहीं और से नहीं लाई गई बल्कि ये पूरी तरह से हमारा उत्पाद है। उन्होंने कहा कि इसे भारत के चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया है और ये 2024 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, 5G की बात करें तो हम भारत की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। वैश्विक बाजारों में तेजी और सूचना प्रौद्योगिकी के शेयरों में भारी लेवाली की वजह से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को बड़ा उछाल आया और इस दौरान सेंसेक्स 1087 अंक से अधिक चढ़ गया। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1087.14 अंक चढ़कर 58,322.47 पर पहुंच गया। व्यापक NSE निफ्टी 317.3 अंक बढ़कर 17,331.65 पर था। सेंसेक्स में शामिल सभी कंपनियों के शेयर लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। इंफोसिस का शेयर करीब 4% चढ़ गया। HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तथा HDFC लिमिटेड भी लाभ में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के बाजारों में तेजी रही और अमेरिकी बाजार भी बृहस्पतिवार को लाभ के साथ बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र में बृहस्पतिवार को 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 390.58 अंक यानी 0.68% की गिरावट के साथ 57,235.33 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 109.25 अंक यानी 0.64% की गिरावट के साथ 17,014.35 अंक पर बंद हुआ था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.13% फिसल कर 94.45 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। शेयर बाजार के स्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 1,636.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सकारात्मक शुरुआत के बाद अपने शुरुआती लाभ को गंवाते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे फिसल कर 82.29 पर पहुंच गया। बृहस्पतिवार को रुपया 82.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.26 पर खुला, फिर बढ़त के साथ 82.12 प्रति डॉलर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 12 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपए ने 82.29 प्रति डॉलर के स्तर को भी छुआ। इसी बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08% टूट कर 112.27 पर पहुँच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.13% गिरकर 94.45 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के स्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 1,636.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं खुदरा अनाज की कीमत सितंबर महीने में 105 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम FCI के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर को सार्वजनिक गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक कुल 511.4 लाख टन था, जबकि पिछले साल यह 816 लाख टन था। 2017 के बाद से अब गेहूं और चावल का स्टॉक सबसे निचले स्तर पर है। 1 अक्टूबर को गेहूं का स्टॉक 227.5 लाख टन न केवल 6 साल के निचले स्तर पर था, बल्कि बफर स्टॉक 2005.2 लाख टन से थोड़ा सा अधिक था। हालांकि चावल का स्टॉक आवश्यक स्तर से लगभग 2.8 गुना अधिक था। 4 साल पहले की तुलना में FCI के गोदामों में कम अनाज उपलब्ध है। FCI के गोदामों में स्टॉक में गिरावट चिंता का विषय है। नॉन PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं और आटे के लिए वार्षिक खुदरा मुद्रा स्फीति सितंबर में अब तक के उच्चतम स्तर 17.41% पर पहुंच गई है, जो पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक है। कीमतों में कमी की संभावनाएं सीमित हैं, क्योंकि किसानों ने अभी तक गेहूं की बुवाई नहीं की और अगली फसल 15 मार्च के बाद ही बाजारों में आएगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।